ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरे नाम जपते हुए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। ओम नमो शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट पे बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने दो वर्सेस किए थे, 38 और 39, है ना। तो उनकी पहले समरी कर लेते हैं कि श्लोक 38 में भगवान ने हमें समझाया कि जब भी समाज में अत्याचार बढ़ते हैं, है ना, लोलेसनेस आ जाती है, जब लीगल सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं, अधर्म जब बढ़ जाता है समाज में, तो जो पनिशमेंट है ना, जो दंड है ना, वो भगवान है। और फिर भगवान ने कहा कि सेकंड पॉइंट में भगवान ने कहा कि जो एक्चुअली जीतना चाहते हैं उनकी नीति मैं हूँ। मतलब जो अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कि सत्य सत्य ही हमेशा जीतता है, है ना। लेकिन फ्रेंड, सत्य की राह आसान नहीं होती, लेकिन सत्य की राह पर जो भी चलेगा ये तो फॉर श्योर है कि जीतेगा वो ही, है ना। लेकिन सत्य का रास्ता आसान नहीं है, बट एंड में जीत उसी की होगी। फिर हमने आगे समझा कि सब रहस्यों में मैं मौन हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सब रहस्यों में मैं मौन हूँ, साइलेंट हूँ। फिर आगे भगवान ने कहा कि बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ, है ना। मतलब अगर हम जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर रहे हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज में अगर बुद्धिमता आ गई है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति में, तो सद्बुद्धि आ गई है, ज्ञान आ गया है, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यही तो है भगवान की कृपा, यही तो है मेरी लाइफ में भगवान की प्रेजेंस। तो जो कुछ भी अच्छा हो रहा है लाइफ में, तो वो सब भगवान की प्रेजेंस है। फिर 39 वर्स में हमने समझा कि भगवान कह रहे हैं कि एक पेड़ जो लगता है ना, उसका कारण बीज है, है ना। जब एक पेड़ हम बहुत बड़ा देखते हैं तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण एक छोटा सा बीज है जो दिखता नहीं है। फिर बीज जब अंकुरित होता है छोटा छोटा करके बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन एक बीज है। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि चाहे कोई लिविंग बीइंग हो या कोई नॉन लिविंग बीइंग हो, अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि हर एक चीज का जो ओरिजिन है, जो बीज है, जो सीड है, जो शुरुआत है ना, वो भगवान है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की प्रेजेंस के बिना एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, हम आपस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर पाते हैं, बात सुन पाते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो भगवान तो है ही है, भगवान के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बिना तो सारी दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन भगवान के बिना मैं तो छोड़ो, ये सारी कोई कोई भी व्यक्ति, कोई भी ये सारी सृष्टि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो भी संसार में हमें दिख रहा है ना, जो भी आप समझ पा रहे हो, जो कुछ नहीं भी समझ पा रहे हैं, कि हमारी बुद्धि लिमिटेड होती है, भगवान फिर भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान सिंपल बात हमें समझा रहे हैं कि तुम समझ लो कि मैं ही वो बीज हूँ जिससे शुरुआत हुई है सृष्टि की। तो बीज के एग्जाम्पल से हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान ही सारी सृष्टि के जनक बीज है, और कोई भी चर या अचर प्राणी उनके अस्तित्व के बिना नहीं रह सकता। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो, 41 पढ़ना है।
हरी हरी बोल। अध्याय 10 श्लोक नंबर 41। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें ये समझा रहे हैं, जो दिख पा रही है और जो नहीं भी दिख पा रही है हमें, बहुत सारी ऐसी सृष्टियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी सेंसेस जो हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, लिमिटेड है अपनी कैपेसिटी में। लेकिन जो भी दिख रहा है ना हमें, और जो नहीं भी दिख पा रहा है इस क्रिएशन में, है ना, भगवान ये बता रहे हैं उनके लिए ये छोटा सा स्पार्क है, छोटी सी चिंगारी है। मतलब जो भी हमें ऐश्वर्य नजर आता है ना, कोई भी जो प्रोमिनेंट चीज किसी कहीं पे भी हमें नजर आती है ना, तो मान लो कि ये प्रभु श्री कृष्णा से आ रहा है ना। तो भगवान का कहना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का जो गांडीव धनुष है ना, उसको कोई काट नहीं सकता, कितना फेमस था उसका गांडीव धनुष है ना, क्योंकि किसी के धनुष में और किसी के धनुष में इतनी पावर नहीं थी जितनी कि अर्जुन के गांडीव धनुष में थी। तो ये भगवान का तो ऐश्वर्य है। और फिर जैसे कि द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था भगवान ने जो दिया था है ना, जिसे द्रौपदी खाना खिलाती थी, भगवान का ही तो ऐश्वर्य है ना। जो कुछ भी प्रोमिनेंट स्पेशल चीज हमें दिखती है ना इस सृष्टि में, वो सब भगवान का ही ऐश्वर्य है। कोई भी सुंदर चीज हमें दिखती है वो भगवान का ही ऐश्वर्य है। कुछ भी सुंदरता किसी चीज में, प्रकृति में है ना, पेड़ पौधों में, ये प्रकृति का सौंदर्य ये कहाँ से आ रहा है? किसने बनाए इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर पक्षी, इतने सुंदर सुंदर खेत बने होते हैं ना, कितना सुंदर सुंदर सब ये प्रकृति है। ये सब कहाँ, पहाड़ देखो कितने सुंदर सुंदर है, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब कुछ भगवान श्री कृष्णा से ही आ रहा है ना। और किसी व्यक्ति विशेष में जो सुंदरता है वो भी भगवान श्री कृष्णा की ही विभूति का अंश मात्र है। और तेजस्वी सृष्टियां, चाहे वो कोई भी संत महात्मा हो, मुनि हो, ऋषि हो है ना, उनका जो तेज है वो सारा तेज प्रभु श्री कृष्णा से ही आ रहा है। यानी कि सारा ऐश्वर्य, जितनी भी सुंदरताएं हमें दिखती हैं ना, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, पहाड़ों की सुंदरता हो, किसी व्यक्ति विशेष की सुंदरता हो है ना, ये सब कुछ मिला भी दिया जाए ना, इकट्ठा कर दिया जाए अगर, तो ये भगवान के ऐश्वर्य का, उनके तेज का स्फुलिंग मात्र है ना, जस्ट ए स्पार्क ऑफ हिज स्प्लेंडर। मतलब कृष्णा के ऐश्वर्य का, उनके तेज का एक छोटा सा कण है, स्फुलिंग मात्र है। तो फिर देखो भगवान तो कितने ही सुंदर होंगे, भगवान का कितना ज्यादा ऐश्वर्य होगा, कितना ज्यादा ऑपुलेंस होगा कि जो हमें नहीं पता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि फ्रेंड, जब हम भगवान की इस ऑपुलेंस को, इस ग्रेट वेल्थ को, इस लग्जरियसनेस को समझ पाएंगे ना, तभी हम विनम्र होंगे और हमारी डिवोशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। जब हम भगवान की इस ऐश्वर्य को समझ पाएंगे ना, तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। देखो जैसे श्रीमद् भागवतम में भी समझाया गया है कि जैसे कि पूरा के पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के जो फर्स्ट एसोसिएट है ना, जो भगवान विष्णु के साथ साथ होते हैं, शेषनाग जो भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम रूप में होते हैं, और भगवान विष्णु के साथ किस रूप में होते हैं? शेषनाग के रूप में है ना। तो शेषनाग के हजारों फन हैं, हजारों फन के ऊपर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, टाइनी छोटा सा सरसों का दाना पड़ा हुआ है ना। तो जो हमारे लिए जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है ना, इतना बड़ा हमारे लिए कितना बड़ा लगता है यह ब्रह्मांड है ना, वो शेषनाग के लिए क्या है? एक फन के, शेषनाग के हजारों फन है, तो उस हजारों फन में से एक फन के ऊपर एक छोटा सा टाइनी सा सरसों का दाना, इतना है हमारे ब्रह्मांड की सीमा। और हमें अपना ब्रह्मांड कितना बड़ा लगता है, क्योंकि हमारी हमारे जो सेंसेस है ना वो लिमिटेड है, हम उतना नहीं समझ सकते जितना भगवान का ऐश्वर्य है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम पूरी सृष्टि में इनसिग्निफिकेंट है, हम बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। भगवान एक बहुत बड़े समुद्र है और हम क्या है? हम एक समुद्र की बूंद है। हम सिग्निफिकेंट कब बनेंगे, हम कब इम्पोर्टेंट बनेंगे फ्रेंड? जब हम अपनी असली पहचान को जाने, ये समझें कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं और हम परमपिता परमात्मा की छोटा सा हम उनका अंश है, और अपना जीवन हम भगवान की सेवा में लगा दें, तो हमारा जीवन भी सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज देखो कितने लोग आए, बड़े बड़े राजा लोग आए, अरबपति लोग आए, चले गए, खत्म हो जाता है सब कुछ, सब राजपाट ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान और भगवान की ये ग्लोरिफिकेशन, उनका ये ऐश्वर्य, ये गुणगान कभी खत्म नहीं होता। और अगर हम इन चीजों के साथ, अगर हम मटेरियल चीजों के साथ अटैचमेंट बनाएंगे, तो हम फिर कभी भी परमानेंट हैप्पीनेस को कभी भी हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड, जब हम समझ जाते हैं ना कि भगवान की को हम समझ नहीं सकते, तब एक्चुअली हमारी भगवान को समझने की शुरुआत हो जाती है ना। जब हम अपना बुद्धि लगा के, जितनी मर्जी बुद्धि लगा ले, जितना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर ले, हम सोचे कि नहीं नहीं हम तो भगवान को जान जाएंगे, तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। जब जिस दिन हम समझ जाते हैं ना कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की ग्लोरिफिकेशन अनगिनत है, हम उनको कुछ कभी नहीं समझ सकते, तब हमारी भगवान को समझने की एक्चुअली भक्ति की हमारी शुरुआत होती है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी।
हरे हरि बोल। श्लोक नंबर 42। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरि हरि बोल। तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे उतना ही ज्ञान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना सारा ज्ञान दिया है ना, इस चैप्टर में बहुत सारा ज्ञान दिया, मतलब 10 चैप्टर तक आते आते है ना। और अर्जुन के माध्यम से हम देख रहे, अब प्रभु क्या कह रहे हैं, अब प्रभु कह रहे हैं कि इतना सारा ज्ञान लेकर तुम करोगे क्या अर्जुन। वो अब समझा रहे हैं कि भाई इतने तुम्हें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुमने पूछा तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछा तो मैं तुम्हें अपना ज्ञान दिया, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और एक छोटे से फ्रेगमेंट से पूरी सृष्टि भगवान ने चलाई हुई है। तो फ्रेंड्स, ज्ञान से हम ज्यादा नहीं उलझेंगे, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हम जितना मर्जी सोच लेना, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, पर फिर भी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी जितनी मर्जी, 1000 साल की उम्र भी हो जाएगी ना हमारी, तो हम जो भी भगवान की बुक्स हैं, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो हम सारे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की लिमिटेशंस है, हमारी बुद्धि लिमिटेड है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि एक समुद्र के अंदर भी कोई सृष्टि है या नहीं है, है ना। अगर हम पूरा जीवन उसको समझने के लिए भी लगा देना, तो भी हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि समुद्र में कितनी वैरायटी की फिश एग्जिस्ट करती है। एक समुद्र में जीवन में हम लगा दें, तब भी हम नहीं समझ पाएंगे कि एक समुद्र में कितनी वैरायटी की फिश एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ही करोड़ों अरबों समुद्र है पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ इस पृथ्वी की बात नहीं है, और भी प्लैनेट्स हैं। तो मॉडर्न सिस्टम के एंगल से तो यही एक लाइफ है, है ना, लेकिन वैदिक सिस्टम के एंगल से ये एक छोटा सा एटम है पूरे क्रिएशन में। क्योंकि वैदिक सिस्टम के हिसाब से हम चले तो बोलते हैं 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, जिसमें भगवान का गोलोक धाम, वृंदावन धाम है ना, और अलग अलग धाम आते हैं, जैसे सूता लोक, पताल लोक, स्वर्ग लोक है ना, और भी अलग अलग तरह के प्लैनेट्स। तो सोचिए, वैदिक सिस्टम के एंगल से ये एक छोटा सा एटम है पूरी क्रिएशन में, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना। तो सोचिए, अगर हम लॉजिक से चल पड़े कि और ये ज्ञान ले, हम सोचे कि हम ये ज्ञान ले लेते हैं, हम वो ज्ञान ले लेते हैं, भगवान के बारे में पूरा जान लेते हैं, है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स, हम चाहते क्या हैं, है ना, एक्चुअली हम ज्ञान नहीं लेना चाहते, हम लोग आनंद लेना चाहते हैं, है ना, प्योर हैप्पीनेस, पीस लेना चाहते हैं कि हम, हमारी ये जो जिंदगी है, बस इसमें पीस आ जाए और इसको हम हैप्पीली, इसको हम जी पाए, है ना। एक्चुअली हम यही चाहते हैं ना, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, है ना। हम लोग कुएं के मैडम की तरह है, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को बहुत नॉलेज है, या हम लोगों को बहुत नॉलेज आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा इंटेलेक्ट है, हमारा बहुत बड़ी बुद्धि है हमारी, लेकिन जहाँ भगवान बैठे हैं उसके एंगल से हम छोटा सा एटम भी नहीं है। जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सूरज कितना बड़ा है, लगता है ना। जब हम सूरज को यहाँ से देखते हैं, पृथ्वी से, तो सूरज को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार सूरज के आगे तो हम कितने छोटे से हैं, है ना। आकाश के आगे हम खड़ा हो जाएं तो हमें क्या लगता है कि आसमान कितना बड़ा है। एक समुद्र छोड़ दो सब कुछ, समुद्र के आगे भी हम खड़े हो जाएं ना तो हमें क्या लगता है, क्या लगता है, एक बार खड़े होना, एक समुद्र के आगे खड़े होना, बिल्कुल शांत मन से सोचना कि क्या है हमारी औकात। मुझे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगता है कि एक समुद्र के आगे भी हमारी कोई औकात नहीं है, और हम अपने आप को कितना कुछ समझ लेते हैं कि मेरे बिना लाइफ नहीं चलेगी, मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं नहीं होती तो ऐसा होता, अगर मैं कितनी मैं लगाई होती हमने। एक सूरज के आगे खड़े हो जाएं हम, एक आसमान के आगे खड़े हो जाएं, या एक छोड़ो सब कुछ, एक समुद्र के आगे हम खड़े हो जाएं, तो हमारी कुछ भी औकात नहीं है फ्रेंड्स। और सूरज से अगर कोई हमें देख रहा होगा तो हम कैसे लग रहे होंगे, हम एक छोटे से एक बैक्टीरिया लग रहे होंगे। अब जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, अभी कोरोना वायरस है, तो वो वायरस कितना छोटा होगा, मतलब एक रेत का कण भी बहुत बड़ा हो गया, उसका भी कितने हजारों गुना उसको डिवाइड कर दो तो इतना छोटा सा होगा वो, ये वायरस, तो क्या हमने उसको देखा है ना, लेकिन उसने कितनी तबाही मचा के रखी हुई है। तो हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, उस छोटे से वायरस को। सूरज से अगर कोई हमें देख रहा होगा तो हम भी एक बैक्टीरिया ही लग रहे होंगे। हम अगर बैक्टीरिया को देखते हैं, अब वायरस, अब जो कोरोना वायरस, उसको तो हम देख ही नहीं पाते, इतना छोटा सा है वो, है ना, लेकिन चलो हमको लेंस वगैरह से हम देख भी लें, किसी भी बैक्टीरिया को हम देखते तो हमें क्या लगता है यार ये बैक्टीरिया कितना छोटा है। लेकिन बैक्टीरिया से कोई अगर हमें देख रहा है तो उसको भी वैसा ही लगेगा जैसा हमें सूरज को देख कर लगता है। फ्रेंड्स, हम सब ना रिलेटिविटी में जी रहे हैं, यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमें लॉजिक से ऊपर उठना है, ज्ञान से ऊपर उठना है। ज्ञान से ऊपर क्या है? ज्ञान से ऊपर है श्रद्धा, सेवा, विनम्रता। अगर हम सच में आनंद लेना चाहते हैं ना, पीस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, हमें क्या लगता है एक छोटी सी लाइफ है यार, बस इसको प्यार से जी लें और इसको आनंद से जी लें, बस उस वो कैसे जी सकते हैं हम इतना ही चाहते हैं, है ना। और अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें क्या समझाया जा रहा है वहां पे कि हमें थोड़ा थोड़ा जितना हम हेल्प कर सकते हैं समाज कल्याण की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, है ना, थोड़ा कुछ भी, जो भी आप, चाहे आप गौशाला में दान कर रहे हो, चाहे आप अनाथ आश्रम में दान कर रहे हो, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें बिल्कुल समाज कल्याण की तरफ भी बढ़ना चाहिए। जैसे भगवद गीता का जरूरी नहीं है आप पैसे से, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। भगवान ने हमें जो भी हमें धन दिया होता है तो वो बांटने के लिए दिया होता है कि कुछ परसेंट हमें बिल्कुल इस समाज कल्याण में भी लगाना चाहिए, है ना। और जैसे आप भगवद गीता का ज्ञान ले रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत तो सीख ही रहे होंगे ना, तो यही अब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में बांट दो कि भाई मैं भी ऐसा कर रही हूँ और ये हमें समझाया जाता है, तुम भी ऐसा, अगर आपको लगता है कि मेरे किसी फ्रेंड किसी रिलेटिव को जरूरत है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा समझा सकते हो, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एंगेज कर सकते हो कि चलो तुम, मैं तुम्हें एक माला गिफ्ट कर सकते हो उसको, है ना, नहीं तो आप हमें बोल दो, हम आपको गिफ्ट कर सकते हैं, है ना, गोलोक एक्सप्रेस फ्री गिफ्ट करता है तो हम आपको उस तरह से हम आपको गिफ्ट कर सकते हैं, है ना, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो किसी को माला, किसी को चैंटिंग बॉक्स, किसी को टेलीकाउंटर, तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो। किसी को कुछ थोड़ा सा आप समझा भी देते हो ना अपने लाइफ का, एक आधा घंटा एक घंटा किसी को आप किसी को समझाने के लिए देते हो, तो हो सकता है उसको उसका आपका एक घंटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, हो सकता है वो उसके फेस पे एक स्माइल ही आ जाए। हर किसी को तो देखो फ्रेंड्स पैसे की जरूरत नहीं होती, है ना, किसी को इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो थोड़ी सी आप हेल्प कर दो उसकी, और किसी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो थोड़ा सा किसी को समझा दो, जो आप सीख रहे हो बस उसको बांटते चलना है हमें, है ना। गोलोक एक्सप्रेस में कहा जाता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन, है ना, तो हमें ये टैगलाइंस को हमेशा याद रखना है और बांटते चलना है, जो भी सीख रहे हो, जो भी ज्ञान ले रहे हो, है ना, उसको बांटते चलना है। तो हम लाइफ में क्या चाहते हैं फ्रेंड्स, हम लाइफ में चाहते हैं एक सिंपल सी हमारी लाइफ है उसको हम चाहते हैं कि बस हैप्पीनेस हो हमारी लाइफ में, है ना, उसको हम आनंद से जिए, तो हमें उसके लिए समाज कल्याण में आगे बढ़ना है और हमें भक्ति भाव से सिंपल ये एक्सेप्ट कर लेना है कि प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर ही श्रेष्ठ हैं और हम उनके बच्चे हैं। हमें सिर्फ ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि हम उनकी सेवा कैसे करें, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ। ये ज्ञान तो हमें भगवद गीता के माध्यम सब मिलेगा, जो जो रिक्वायरमेंट है भगवान सब हमें, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हमारा अंदर से क्या डिजायर होने चाहिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ, जो आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो प्रभु मैं वो सब पूरा कर पाऊँ, हमारा ये हमारी प्रेयर्स का हिस्सा होना चाहिए कि प्रभु मैं आपके रास्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, आप अभी नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप भगवान के आगे बैठ के ये प्रार्थना तो कर सकते हो ना कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, है ना, मैं सबके साथ मिलजुल के चलना चाहती हूँ, आप मुझे गाइड करो मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये प्रेयर्स हमें, ये जो प्रार्थना, ये हमें रूटीन में जो भी दो टाइम हम बैठते हैं भगवान के आगे तो हमें करनी है कि कैसे मैं प्रभु अपने कर्मों की क्वालिटी को इम्प्रूव करूं कि प्रभु हमेशा मुझसे खुश रहें। जो मैं कर्म करती हूं हमें उसकी क्वालिटी को चेक करना है कि क्या मैं वैसे कर्म करती हूं जो प्रभु को खुश करते हैं, या ऐसे कर्म करती हूँ कि जो मैं अपने आप को भी नहीं बता पाती, भगवान को तो क्या ही बता सकती हूँ, है ना। तो हमें अपने कर्मों की क्वालिटी को चेक करना है और ऐसे कर्म करने हैं जिससे प्रभु खुश हों, है ना। ये फ्रेंड्स हमारा डिपार्टमेंट है। तो जितना जितना हम ये करते चलेंगे उतना उतना हमें लाइफ में हैप्पीनेस मिलना शुरू हो जाएगा। जितना जितना हम भगवान की भक्ति में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हम करते जाएंगे, अपने कर्मों की क्वालिटी को इम्प्रूव करते चलेंगे, तो हमें क्या होगा, कर्मों की क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो मतलब हमारा भाग्य भाग्य बनेगा, है ना। हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है, है ना। तो हमें कोई ये जानने की जरूरत नहीं है फिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा है, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें लगता है कि यार मैं बेस्ट चल रही हूँ तो मेरे साथ अच्छा, फिर ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, है ना, मैं सब कुछ वो कर रही हूँ जो प्रभु को अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जो मैं प्रभु को, प्रभु से नजरें ना मिला पाऊँ, है ना। तो ऑटोमेटिक है कि सब कुछ आपकी, जब कर्मों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जब आप भगवान से कनेक्शन बना रहे हो, तो ऑटोमेटिक है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पीस मिलेगी, आनंद आना लगेगा जीवन में। और जितना जितना हम ये करते चलेंगे ना, ऑटोमेटिक है कि हमें लाइफ में हैप्पीनेस पीस मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस रास्ते में जब हम चल रहे हैं ना, तो हमें हैप्पीनेस पीस इससे भी ऊपर उठना है। हैप्पीनेस पीस तो हम, आप किस भी रास्ते में चलो ना, आपको मिल जाएगी, है ना। किसी भी अच्छे रास्ते में चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या करना, सोचना है, हमें भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें एक मनुष्य जीवन मिला है ना, है ना, इसको तुम बेस्ट वे में कैसे जी सकते हो, है ना, कैसे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। हमें उस पे फोकस करना है। अब लाइफ में पीस आ गई, हैप्पीनेस आ गई, तो इसके आगे भी बढ़ना है ना। तो ये अल्टीमेट पर्पस नहीं है हैप्पीनेस मिलना, पीस मिलना, ये तो मिल ही जाएगा, ये तो साइड बाय साइड मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट पर्पस है अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना, अपने इस इनसिग्निफिकेंट जीवन को भी सिग्निफिकेंट बनाकर, जो बहुत अच्छा योगदान देकर जा पाएगा ना इस वर्ल्ड की पॉजिटिविटी में, वही भगवान की नजर में सबसे अच्छे बच्चे होंगे उनके, और भगवान उनके अपने भक्तों का, उन बच्चों का साथ हमेशा हमेशा देते हैं, और फाइनली हम भगवान को अटेन कर सकते हैं। और इसी को विजडम कहते हैं फ्रेंड्स, जो हम भगवान के इच्छा अनुसार, भगवान जो कह रहे हैं हमें भगवद गीता में, उसके इच्छा अनुसार जब हम जीवन जीने लगते हैं ना, तो उसी को विजडम कहते हैं। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताई जाती है ना, जो भी भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जीवन जीना है। हमें क्या करना है, हमें उतना ही ज्ञान लेना है जो भक्ति संगत है, तो जो एक्चुअली हमें हम्बल बनाता है, ऐसा ज्ञान, है ना। भगवद गीता का ज्ञान मिल रहा है ना, तो यह क्या सबको मिल रहा है, सबको मिल जाएगा, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? 99.9% लोग ये ज्ञान लेते ही नहीं है। हम अपने ही फैमिली में देखते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, तो क्या आप देख लो, आप अपने बड़े देख लो, क्या उनको ये ज्ञान मिला है? तो भगवान ये ज्ञान सबको नहीं मिलता है फ्रेंड्स, जो भगवान के भक्त होते हैं, है ना, या पिछले जन्मों के जिनके कर्म होते हैं, इस जन्म के कुछ कर्म होते हैं, तो भगवान ये ज्ञान उनको ही देते हैं जिनको जरूरत होती है। मैंने अपने केस में तो ये देखा सच में कि जिनको भगवान को लगता है ना कि एक्चुअली इनको जरूरत है और इनको देना चाहिए, अब ये राइट टाइम है, उसको ही भगवान ज्ञान देते हैं। तो इसको ये इतना छोटा नहीं ले लेना ना कि अगर हम भगवद गीता का ज्ञान मिल रहा है तो बहुत छोटी बात है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने जीवन में भगवान की जो बातें हैं, भगवान की जो वाणी है, हमें सुनने को मिल रही है। तो ये सब चीजें हमें हम्बल बनाती है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो हमें हेल्प करेगी समझने के लिए कि हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है, इस भगवद गीता हमारी हेल्प करती है, और अपनी एवरी डे लाइफ को कैसे जीना है ये भगवद गीता हमें बताती है। तो ऐसा ज्ञान हो गया भक्ति संगत, जिसमें हमें एवरीडे लाइफ को कैसे एथिकली जीना है वो बताया जाए, है ना, अपनी एवरीडे लाइफ को कैसे मोरालिटी से जीना है वो ज्ञान बताया जाए, वो है भक्ति संगत ज्ञान, जो हमारी लाइफ को ओवरऑल बेटर कर रहा है और हमें डिवोशन में आगे लेकर जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आगे लेकर जा रहा है। लेकिन हमें मीनिंगलेस ज्ञान से, जिसका जो व्यर्थ है हमारी लाइफ में, उन सब चीजों से दूर रहना। अब टीवी में जो हमें ज्ञान मिलता है, फालतू पॉलिटिक्स का ज्ञान ले लो, है ना, जिसमें कोई भी मतलब बात रेलिवेंट नहीं है, है ना, सब कुछ इररेलीवेंट है, है ना। ठीक है, अगर आपको न्यूज सुनने का है, अच्छा लगता है, तो ठीक है, 10-15 मिनट सुनी पूरे दिन में, ये नहीं कि पूरी न्यूज, पूरा दिन न्यूज ही सुनते रहना है, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं, है ना फ्रेंड्स, वही हम फिर बनते जाते हैं। अगर हम यही सब कचरा, ये जो पॉलिटिक्स का या सब कोई भी नेगेटिव चीजें हम देखते रहेंगे, टीवी में नेगेटिव कोई सीरियल्स हैं उनको देखते रहेंगे, है ना, तो ये सब व्यर्थ का कचरा हमारे अंदर भरता है। तो फिर जो भगवान का ज्ञान है वो हमें फिर ठीक से मिलता नहीं है, है ना, ठीक से समझ नहीं आता है। तो ये समझना है फ्रेंड्स कि ज्ञान तो ब्रह्मांड की तरह है, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें सिलेक्टिव रहना है ज्ञान प्राप्त करने में कि कौन सा ज्ञान मुझे लेना है और किस व्यर्थ के ज्ञान से मुझे दूर रहना है। आज तक बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं फ्रेंड्स, जितने भी नाम आपने सुने हैं, जैसे शबरी है, है ना, जिसने भगवान श्री राम को जूठे बेर भी खिला दिए, है ना, उनको ज्ञान नहीं था, उसके दिल में क्या था, उसके दिल में प्रभु के लिए सच्चा प्रेम और श्रद्धा थी, है ना। ऐसे एक नहीं अनेक एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमें आनंद लेना है ना तो हमें फिर भक्ति भाव को बढ़ाना है अपने अंदर, फीलिंग्स का डिपार्टमेंट हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, भगवान के प्रति भाव होने चाहिए हमारे अंदर। तो हमें सिर्फ इतना ज्ञान चाहिए कि सिंपल जो हमें भगवान ने बताया इस चैप्टर में कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, है ना, अब हम उनके बच्चे हैं और हम उनकी सेवा कैसे करें, बस ये हमें समझना है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, जय श्री कृष्णा, हरी हरि बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल। हाँ जी महाराज जी, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ये वर्सेस हमें समझाए। सच में ये जो चैप्टर है प्रभु का ऐश्वर्य, इसमें प्रभु ने अर्जुन के माध्यम से हमें यही ज्ञान दिया है कि प्रभु श्री हरि ही सर्वश्रेष्ठ हैं। सारी सृष्टि के रचयिता भी प्रभु श्री हरि है, सारी सृष्टि में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी प्रभु ही विद्यमान है। और हमने एक बात ये भी समझी कि किसी भी व्यक्ति में जो विशेषता है वो भी प्रभु की ही देन है। तो फ्रेंड्स हमें इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है कि ये अपने में ईगो नहीं लानी है, क्योंकि वो विशेषता प्रभु की ही देन है। हमें हम्बल होना है और प्रभु ने जो हमें विशेष जो विशेषता दी है उसको हमें उसका हमें प्रभु की भक्ति में ही उसे प्रभु की भक्ति में ही लगाना है, ताकि हम प्रभु को खुश कर सके, उससे अपना अहंकार बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। बाकी हमने ये भी एक बात समझी कि ये जो सारी सृष्टि में जो भी पेड़ पौधे नदी नाले समुंदर जो भी हैं, हम फ्रेंड जैसे हम जब अपना प्रकृति को देखते हैं तो सुबह जब हम उठते हैं प्रकृति को निहारते हैं तो सच में एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और अब जब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो मेरे को तो यही फीलिंग आती है कि इसी में प्रभु विद्यमान है। और जब सूर्य उदय होता है तो भी लगता है कि हम साक्षात प्रभु श्री हरि के ही दर्शन कर पा रहे हैं। तो हमने इसमें ये समझा कि प्रभु ने जो भी ज्ञान दिया है, प्रभु की भगवद गीता में जो भी समझा रहे हैं, हमें केवल इसमें यही ज्ञान लेना है कि क्योंकि हम प्राणी मात्र हैं और हमारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल ही लिमिटेड है, और प्रभु का ये जो ऐश्वर्य है ये असीम है, अनंत है, अपार है। इसे हम अपने ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है और ये इतना छोटा है कि इसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। तो हमें व्यर्थ के ज्ञान की तरफ नहीं भागना है, बल्कि प्रभु के दिए हुए उपदेश से केवल हमने यही समझना है कि हम ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसे हमने प्रभु के आगे शरणागत होना है और वही कर्म करने हैं जिससे हम प्रभु को खुश कर सके। बाकी अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और अपने अंदर जो हमारी ईगो है सबसे पहले इसका त्याग करके हमें हमारे अंदर जो भी विशेषता है उसे हमें प्रभु को ही अर्पित करना है। और अपने जीवन का बस एक यही मेन उद्देश्य हमने समझना है कि हमें अपने कर्मों से केवल प्रभु को ही खुश करना है और हमें प्रभु के बताए गए रास्ते पर ही चलना है, ताकि हम जो है अपने सारे कर्म पर प्रभु को अर्पित करते जाएं और प्रभु को खुश कर सके। और जब हम फ्रेंड्स अपना डिवोशन से जुड़ते हैं तो इससे हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है, और इसके साथ हमने अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी बढ़ाई हैं। तो और हमने ये बात भी समझी है कि हमें मैं से हम पर आना है, यानी कि ये जो सारा संसार है सारे अपने ही भाई बंधु हैं और हम एक शरीर नहीं, हम एक सोल हैं, और हमें सुप्रीम सोल से जो है अपना ट्रू कनेक्शन बनाना है, प्रभु श्री हरि के साथ अपना जो हम रिश्ता भूल बैठे हैं उनके साथ ही हमें अपना ट्रू कनेक्शन बनाना है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग नीना जी, बहुत ही सुंदर तरह से आपने सब दोबारा से रिवाइज कर दिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल मोना जी, सबसे पहले तो आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम जो ये भगवान जी की बातें समझ पा रहे हैं वो सब आपकी ही वजह से समझ पा रहे हैं, क्योंकि सच में भगवान ने आपको ऐसा माध्यम बना के भेजा है कि हम इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है, तो प्रभु ने हमें चुना है आपके माध्यम से कि हम भी इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में जो धारण करें और भगवान की बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करें। तो सच में पहले तो इन बातों से हम बिल्कुल ही परे थे जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ते थे, अब जब से भगवत गीता पढ़नी शुरू की है तो सच में जो भगवान जी का हर एक अध्याय में एक एक श्लोक में तो पर्टिकुलर एक ही बात बताई है कि मुझ में ही अपना ध्यान लगाओ। तो सच में पहले तो यही इतना ही पता था कि भगवान है, पर भगवान का इतनी अच्छी बातें जो हम भगवत गीता पढ़ते हुए ले रहे हैं ज्ञान भगवान जी का, तो सच में ये आज का हम आपने भी दसवां अध्याय हमें कंप्लीट करवाया, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ये ऐसा ऐश्वर्य है कि हम तो सच में भगवान जी की आके कुछ भी नहीं है। उसे वही आपने बताया कि शेष नाग के फन के ऊपर एक छोटा सा बिंदु मात्र भी नहीं है, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में जान सके, बट जितना जितना हमें हमारी बुद्धि से हमें पता चला कि भगवान जी का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो सच में मैंने भी इनकी बातों को थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जितनी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो भगवान जी ने हमें बुद्धि दी, हमारी बुद्धि में बैठे। तो जैसे आपने बताया कि भगवान जी ही हमें चुनते हैं, आपने बताया कि अपने केस में मुझे है कि जिसको जिसनी बुद्धि मिलनी है तो वो भगवान जी चुनते हैं और उन्हीं को देना चाहते हैं जो सुनना भी चाहते हैं, तो शायद हम भी उन्हीं में से एक हैं कि भगवान ने हमें चुना है और भगवान का ये ज्ञान हम पा रहे हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य सच में ये प्रकृति, सूर्य चंद्रमा जितना भी है, इन सबके लिए हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, देते हैं कि आज हम जो देख पा रहे हैं ये सब भगवान की वजह से है। हम सुबह मनुष्य जीवन एक जो पहले तो सबसे मिला है वो भगवान जी की वजह से हमें मिला है, और इसमें रहते हुए हमें जो भी अब हम सीख रहे हैं उन्हीं की बातों को, अच्छी बातों को सुनना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपनी डे टू डे लाइफ की ड्यूटीज को कैसे करना है, भगवान की दी हुई ड्यूटीज को समझ के ही करना है, तो भगवान जी और भी हमारी हमारे साथ हमेशा रहते हैं और ये बताते हैं कि अगर आप मेरी भाई बताई बातों पर चलो तो मैं और भी मतलब विजडम बोलते हैं ना देते हैं, तो सच में वो देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना सुनाऊं तो मैं भी पहले ऐसे मटेरियल वर्ल्ड की चीजों में घुसी थी कि नहीं, मतलब अपने को खुद बॉस मानती थी कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो जैसे मैं चाहती हूँ वैसा होना चाहिए, पर नहीं, अब पता चल गया कि भगवान ही है जो इन कारणों के कारण है और हम इंसानों के माध्यम से हम भगवान की बातों को समझ सकते हैं। भगवान ने हमें जो मनुष्य जीवन दिया है उनको शत शत प्रणाम है, इस जीवन में रहते हुए हम अब जो बचा बाकी पहले वाला समय तो चलो अब जो गया हो गया, उसका टाइम तो अब वापिस नहीं आ सकता, अब जो हम सीख रहे हैं इससे शुरू करके अपना जितना हमारा जीवन बचा है उनकी बताई हुई बातों को हम हम्बल होके सुने और अपने में विनम्रता लाएं, और विनम्रता लाएंगे फिर सेवा भाव भी रखेंगे तो सच में भगवान जी और भी हमारी हेल्प करते हैं हमारी हर कामों में हमें। तो जब पहले मेरा मन अशांत रहता था तो पहले मैं ये रहती थी कि पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ नहीं आता था, तो अब जैसे भगवान जी की सेवा शुरू की है, लड्डूगोपाल जी का सेवा शुरू की है, भोग लगाना शुरू किया है और फिर नाम जाप को बढ़ाया, तो अब मन में जो जितनी भी हमारी गंदगी थी वो सब दूर हो गई है। तो ये सब आप ही की वजह से हुआ है, और आपने बताया कि भगवान जी की बताई हुई बातों को हमें इम्प्लीमेंट करने भी सिखाया, तो मैं नहीं कहती कि मैंने ज्यादा शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा ही किया, पर चलो जितना शुरू किया उतने से ही समझ आनी शुरू होगी कि हम कुछ भी नहीं है, हमारी बिसात कुछ भी नहीं है, हम जो भी हैं भगवान जी की ही कृपा से है। सुख दुख भी आते हैं वो इसी तरह आते हैं जैसे हमें इस चैप्टर में बताया कि जैसे सर्दी और गर्मी आती है, हमारे सुख दुख भी ऐसे ही आते हैं, और वो क्यों आते हैं अब ये तभी पता चला, पहले हम ब्लेम ही करते रहते थे कि भगवान जी ऐसा हो गया, दुख आया तो हम भगवान जी को ब्लेम ही करते रहते थे, तो ये हमारे पूरे जन्म के ही कोई ऐसे कर्म किए होंगे तो उसकी वजह से हमें आए दुख मिलते भी हैं, तो उन दुखों से अब कैसे निकलना है वो भी इसी भगवत गीता पढ़ते हुए हमने सीखा। हम जो ब्लेम गेम करते थे किसी को, हम खुद पे जब आप देखने अपने को खुद सुधारना शुरू किया कि नहीं गलती तो सबसे पहले हम में ही होती है, हम ब्लेम ऐसे ही दूसरों को, जीवा बुद्धि, क्योंकि बुद्धि नहीं थी ना वैसी, बुद्धि वैसी नहीं थी और जीवा पे जो आया तो वो बोल दिया। अब जो भी बात करते हैं पहले उसको बुद्धि से सोचते हैं कि ये बात करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है और किन लोगों के सामने कैसे करनी है। वो बुद्धिमत्ता जो आई है मेरी भगवान की वजह से ही आई है, क्योंकि उनकी सेवा ने उन्होंने बता दिया कि नहीं अब जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो सच में ब्लेम नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप को हमें सुधार करना है। जब हम खुद को सुधारना शुरू करते हैं ना तो उसका तो सच में आनंद ही कुछ और है। मैं सच अपने में फील करती हूँ कि मैंने जब से अपनी मतलब अपनी जो बैड हैबिट्स थी मेरे में उन पे थोड़ा सा वर्क करना शुरू किया तो जहाँ मैं कहाँ गलत थी और उधर से भी मुझे भगवान जी ने समझाना शुरू किया ये बातें अब नहीं करनी है, तो सच में उन बातों को छोड़ना शुरू किया है। मैं नहीं कहती कि मैंने पूरी छोड़, थोड़ा थोड़ा जितना जितना मुझे भगवत गीता पढ़ती हुई बातें भगवान जी की बातें पता चलती हैं तो मैं उतना छोड़ती जाती हूँ, फिर वो भगवान जी वैसी बुद्धि हमें देते जाते हैं। तो अब हम इस रास्ते पर चले हैं तो जो पीस और हैप्पीनेस मिली है तो जो पहले नहीं थी, पहले हम एंजाइटी में रहते थे तो वो हैप्पीनेस का कोई बोल भी जाता है कोई बात तो अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं कोई हो भी जाती है, अब फैमिली में रहते हैं हो भी जाती है, अपनी फैमिली अपने बच्चे अपने हस्बैंड के साथ कोई बात हो जाती है तो मैं तो यही समझती हूँ कि नहीं भगवान ने तो मुझे इतने अच्छे रास्ते पे चलाया सच में, मेरे लिए उन्होंने ऐसा रास्ता चुना कि मैं अब किसी की बात तो ध्यान ही देती किसी ने क्या बोला है, तो वो भी उनके कोई पूर्व जन्म कैसे करूं क्योंकि उनमें हमने ये तामसी गुण और राशि गुण पढ़े थे उनमें ये बड़ा होगा तभी ये बातें ऐसी करते हैं। अब हमने उन बातों को पढ़ा है, जिन्होंने इन बातों को नहीं पढ़ा है वो ये बातें करते हैं, अब हमने इन बातों को पढ़ा है और उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अब हमें औरों की बातें इतनी चुभती भी नहीं है और समझ भी आती है कि किन कारणों से ये सब होता था अब होता है और आगे भी होता होगा होगा, तो हम समझ चुके हैं भगवान ने वैसी हमारी बुद्धि दी। सच में फ्रेंड्स जो भी हमें ये टाइम निकाल के मोना जी हमें छोटी छोटी बातें समझा रही हैं उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो तो सच में हमारी लाइफ सच में एक ऐसी लाइफ बन जाएगी ना तो हमने कभी सोची नहीं होगी कि भगवान जी ने हमें ऐसी जो इतनी अच्छी सुंदर लाइफ दी है ना इसको हम भगवान जी की ही ड्यूटी समझ के करते हुए जब भगवान जी की हर एक बात को अर्पित करते हैं भगवान जी के चरणों में तो भगवान जी हमें सब अच्छी आते हमारी और भी बढ़ाते हैं और हमें बताते हैं कि कहाँ हम गलत है। हमें अपनी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं करना है, हमें सेवा भाव करना है, जैसे हमें जो भी बड़े बड़े हैं हमारे या छोटे हैं कहाँ हमें थोड़ी सी कहीं हेल्प करनी भी पड़ती है तो जरूर करनी है, क्योंकि भगवान जी कहते हैं ना कि मन अपना साफ रखो और ऐसे करो तो भगवान जी हमें एक की बजाय अगर हमें कोई इच्छा होगी तो वो एक की बजाय हमारी दो तीन इच्छा पूरी हो जाती हैं। तो सच में ये बातें मैं खुद भी फील कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी और नीना जी ने भी बहुत अच्छा आज अपनी लर्निंग शेयर की कि एक ऐश्वर्य भगवान का दिया हुआ ऐश्वर्य हम सच में इतने ब्लिस खुद को फील करते हैं कि भगवान जी का भी धन्यवाद करते हैं कि हमें और ज्ञान देते रहे, हम मोना जी के माध्यम से और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहे। श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरी
हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, ब्यूटीफुल लर्निंग्स। देखो जैसे आप जो नए डिवोटीज हैं उनसे बात करना चाहती थी मैं कि जैसे ममता जी कह रही है ना तो उनका उनका पहला सेशन कैसे गया, मतलब 2020 में हम लोग जुड़े थे जुलाई 2020 में है ना, 14 जुलाई को हमारा फर्स्ट डे था, उसमें ममता जी को जब बोला गया तो नीना जी ने बात की थी कैसे हम ऐसे शुरू कर रहे हैं भगवत गीता, तो ममता जी ने क्या कहा, ममता जी ने कहा कि नहीं नहीं अभी हमारी एज, जब मेरी भी बात हुई बाद में उनके साथ तो ममता जी ने कहा कि नहीं नहीं मोना अभी तो हमारी एज नहीं है, अभी क्या भगवत गीता सुननी है और पढ़नी है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ममता जी आप सुनो तो सही, पहले एक बार सुन तो लो, एक महीना सुनो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करना, उसके बाद आप छोड़ देना। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं चलो एक महीना कर लेती हूँ, है ना। तो चलो इन्होंने किया, शुरू के 5-6 महीने तो ये खुद ही बताते हैं कि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं उस वक्त मेरा सोने का टाइम होता था जब ये शुरू हुआ 4 बजे का सेशन, तो मैं कई बार सुनती थी कई बार मैं सो भी जाती थी, तो लेकिन मैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेती थी, चलो ठीक है। लेकिन फर्स्ट रीडिंग इन्होंने मतलब कि कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी नहीं की, थोड़ी एक दो की होंगी, लेकिन सेकंड रीडिंग में ये लोग मतलब ये ममता जी जब हमारी सेकंड रीडिंग स्टार्ट हुई मार्च में आई थिंक तो ये यहाँ से सिंसियरिटी से सुनने लगे, तो एक्चुअली इन्होंने अपने जीवन में उतारा, है ना। तो अब आप इनका देख ही रहे हो, है ना। पहले इनको लगता था मैं रिव्यू कैसे दूं, है ना, रिव्यू भी कितना अच्छा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये भगवत गीता की जो भी बातें हैं ना, इसको मानने में इन्होंने कभी भी इफ बट नहीं लगाया कि नहीं नहीं मोना जी ये कैसे करना है। इनको कोई भी होता था डाउट तो इनको ये बात कर लेते थे, और कुछ भी इन्होंने ये नहीं, इनको कुछ भी बोला जाता था इन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि नहीं ये कैसे करूं मैं। जो भी चीजें थी, जो भी मैं अपनी समझ के अनुसार, है ना, या भगवत गीता में भगवान जो भी गाइडेंस देते हैं हमें, है ना, उसके अकॉर्डिंगली इनको जो भी समझ आता गया ना, ये सब कुछ अपने जीवन में उतारती गई, है ना। तो सिंपल क्या होता है कि हम सुनते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, तो वो चीजें अभी थॉट लेवल पर होती हैं, है ना। संस्कार लेवल पर कब आएगा, जब वो चीजें कर्म में आएंगी, है ना, फिर वो इम्प्रेशन बनता है उनका, फिर वो संस्कार बनेगा, है ना। जब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, अब ममता जी इसको एक्सपीरियंस कर रही हैं, है ना, ये सब चीजों को, भगवत गीता के ज्ञान को जब इन्होंने उतार लिया अपने जीवन में, कर्म में ले आई, है ना, तो उसको ये एक्सपीरियंस कर रही हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, ये हमारे अंदर बैठ जाता है, जो हमारे पुराने संस्कार होते हैं जिन पे हम चले होते हैं, फालतू बातों में हम घुसे हुए हैं, फालतू चीजों में, ओवर थिंकिंग में बैठे हुए हैं, वो सब डिलीट होने लग जाता है और ये नए संस्कार बनने लगते हैं, है ना। तो वो ये सब चीजें, वो जो चलता है कंटिन्यूसली, नित्य निरंतर जो चलता रहता है, सुनता भी चाहे रहता है, चाहे ना भी उतारे, है ना, शुरू शुरू में उतारना देखो मुश्किल लगता है ना, एक दो रीडिंग्स कई बार नहीं भी उतार पाता, तो लेकिन आप सुनते भी रहोगे ना, सुनते भी रहोगे तब भी आपकी शुद्धि हो जाएगी, है ना। तो थैंक यू सो मच ममता जी अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, ताकि नए डिवोटीज को हेल्प होती है ना फिर। हाँ जी, और कोई? हाँ जी
मोना जी, जब आपने भगवत गीता पढ़ते हो, हमें एक बात बताई थी कि हम तो इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं कि हमें इसने ये बोल दिया और उसने ये बोल दिया। जब आपने ये बात मेरे से पर्सनली बात की थी ना, देख ममता, तो हमें इन्हीं बातों में उलझे हैं यार। ये मेरे को किसी घर वालों ने ऐसे बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, मेरे बच्चों ने ऐसे बोल दिया, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया। जैसे हम ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, किसी के देवरानी है, किसी के जेठानी है, तो वो बात ना कहीं मेरे माइंड में हिट कर गई, नहीं यार सच में ये बात मोना जी ने तो बोली है, तो सच में हम तो इन्हीं बातों में उलझे रह जाएंगे हमारी जिंदगी। पता नहीं अब अगर रात पहला दिन है, दूसरा दिन हमने देखना भी है या नहीं, हम सोते हुए रह जाएंगे, सुबह का दिन देखना भी है या नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे को बड़ी हिट करी, और उन्हीं उसी बात को लेकर सच में मैं उन बातों को ध्यान भी नहीं देती अब, क्योंकि अब मैंने अपनी जो चैंटिंग है वो बढ़ाई थी, तो चैंटिंग के दौरान भी भगवान जी ने मुझे यही, मतलब अंदर बोलते हैं ना, एक थॉट्स आते हैं, तो वो जो वही फील कर सकते हैं जो करते हैं। जब फ्रेंड्स आप करोगे ना, तो इन बातों को आप भी फील कर पाओगे। तो सच में मुझे भगवान जी ने भी यही बताया कि अब मैंने नाम जाप बढ़ाओ, क्योंकि फालतू की बातें जब हम अपना माइंड बिजी रखते हैं तो फालतू की बातें हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है, और जब हमें हेल्प करनी है तो हेल्प करके हमें छोड़ देना है, बस फिर छोड़ देना है, और फिर ये नहीं सोचना कि हमने किसी की हेल्प की है, बस कर दी तो कर दी, और सिर्फ भगवान जी को बोला भगवान जी हमने तो अपनी ड्यूटी कर दी, अब आपने देखना है। तो सच में इस बात को लेकर मैं भगवान जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, उस के लिए भी मेरे भगवान जी ने बहुत ही हेल्प की, और मोना जी ने भी। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो ममता जी यही तो है, यही तो है भगवत गीता की, भगवान की कृपा, है ना। भगवान को पता होता है हम कहाँ पे उलझे हुए हैं, है ना, तो भगवान ऐसी ऐसी बातें हमारे, मतलब के आपको पता चलेंगी भगवत गीता के माध्यम से, कि आप जहाँ पे आप अटके हुए हो ना, वहां से आपको भगवान निकालना शुरू कर देते हैं। मेरे केस में भी सेम यही हुआ था कि जब मैं आपको पढ़ाने लगी ना 2020 में, तो मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा क्या होने, मुझे तो सिंपल इतना था, एक डिवाइन एक्सपीरियंस था कि निखिल जी जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर है, उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ मोना तुम पढ़ा सकती हो, तुम पढ़ाओ। तो मैंने उस वक्त मना कर दिया था कि नहीं निखिल जी, मेरे को समझ भी नहीं आती थी फ्रेंड। मैं पहली जो भगवत गीता की रीडिंग मैंने की ना, आपको जो नए डिवोटीज है, जो पुराने हैं उनको तो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन जो नए डिवोटीज उनको मैं फर्स्ट रीडिंग मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, ठीक है सुनना अच्छा लगता था, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आता, सब सिर के ऊपर से जाता था, वो बस वही सुना हुआ बातें कि ठीक है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये बस मतलब ऐसे थ्योरी में बातें समझ आ रही थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था, वैसे ऊपर ऊपर से सुन रही थी मैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मैंने कोई भी, और ना भी मैंने कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी नहीं, जो नॉर्मल मैं दो टाइम का भगवान को जोत वगैरह करती थी वो मैं करती थी, शुरू से करती थी वो, सुबह एक टाइम भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाना है, फ्रूट या ड्राई फ्रूट, बस इतना, इससे ज्यादा मैंने कभी कोई मंत्र जाप नहीं किया, मैंने कभी भोग नहीं लगाया 3 टाइम का, कभी आरती नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब मैंने जब आपको मैंने 2020 में गाइड करने लगी ना, तो जैसे वो ही मैं बता रही हूँ, एक डिवाइन एक्सपीरियंस था कि मेरे को लगा उस वक्त मैंने मना कर दिया निखिल जी को, और मेरी फ्रेंड है जो नीना है ना, बचपन से हम लोग, मैं नीना और ममता बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम मेरी जो नीना, तो इनको मैं बोलती थी नीना जी आप सुन लो भगवत गीता, तो मैंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ गोलोक एक्सप्रेस, तो ये बोलती नहीं नहीं मोना मेरे पास टाइम नहीं है, तुझे तो पता मैं कितना बिजी रहती हूँ, तो मैंने भी इनको 2-3 बार बोला चलो ठीक है होगी बात, तो मेरे को मन में ये हो गया ठीक है जब भी ये बोलेंगी ना तो मैं इनको तो मैं ही पढ़ाऊंगी, तो मन में बस ये 2 चीजें मन में रहेगी कि निखिल जी ने बोला मैं पढ़ा सकती हूँ, मैंने भी सुना, 3-4 रीडिंग हुई मेरी, 3 रीडिंग हुई थी मेरी, 3 या 4 हुई होंगी, तो मैंने सिर्फ सुना है उसमें, है ना, सुना और बस अच्छा लगता था सुनना, बस यहाँ तक। तो मेरे को सिर्फ इतनी बात रहेगी कि निखिल जी ने मुझे बोला मोना तुम पढ़ा सकती हो, दूसरा नीना जी ने जब भी बोलेंगी तो इनको तो मैं ही पढ़ाऊंगी। तो आप फ्रेंड बिलीव नहीं करोगे कि 9 या 10 को, थर्सडे या फ्राइडे था मुझे भी याद है, 9-10 जुलाई 2020 में इनका फोन आता है, नीना जी का अमृतसर से, मैं पुणे में रहती हूँ, तो इनका फोन आता है कि मोना मैंने भगवत गीता पढ़नी है तो कैसे करना है, तो मोना ठीक है आप, मेरे मुंह से वही सेम कि आपको तो मैं ही पढ़ा दूंगी। तो बस मैंने कोई, मेरे पास कुछ भी तैयारी नहीं थी फ्रेंड्स, कुछ भी ना मुझे समझ था ना कुछ था, बस ऐसे रैंडमली मैंने शुरू कर दिया कि ठीक है हम ट्यूसडे से, सोमवार को हम हमारा व्रत रहता है, तो मैंने कहा ट्यूसडे से शुरू कर लेते हैं, बस उसके बाद सीधा सिंपल ट्यूसडे को बात हुई है कि ठीक है ट्यूसडे को मैं थी, नीना जी, नीना जी ने ममता जी को पूछा, ममता जी और ममता जी ने अपनी भाभी है इनकी पूजा जी, है ना, वो 4 लोग हम लोग, मेरे हस्बैंड, हाँ मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि उनको भी सेम डे पता लगा जब 14 जुलाई को कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो उनको लगा कि उनको लगा, मैं भी फ्री हूँ ना, लॉकडाउन का टाइम है, चलो मैं भी पढ़ लूंगा, मैंने ठीक है आप पढ़ोगे, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि उन्होंने आगे से बोला कि ठीक है मैं पढ़ूंगा मोना, तो मैं हम लोग 4-5 लोग शुरू हो गए भगवत गीता करने, तो मेरे को वो बहुत ही मतलब मिराकल लगता है, सब अपना एक सब कुछ, उसके बाद मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, स्टार्टिंग में तो मैं करवा रही थी, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं था मुझे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कराती गई ना, मतलब मेरे लाइफ ट्रांसफॉर्म होते मैं खुद देख रही थी, मतलब मैं अपने आप को देख रही थी, मैं कर कह रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, सब मैं फील कर पा रही थी, है ना। तो ये श्लोक भी है जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता का एक श्लोक है ना, 10वां श्लोक मैं रीड करना चाहती हूँ आपके साथ, की वो मुझे बहुत याद आता है कि उसमें लिखा है कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, है ना। मतलब मुझे अब मुझे ये लगता है कि यही तो मुझे चाहिए था, जो भी भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, लाइफ जीने का तरीका बता रहे हैं यार भगवत गीता में, और देखो मैं उसी से पीछे हट रही थी, पर बार बार मुझे भगवान भगवत गीता से जोड़ रहे हैं, गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ रहे हैं कि भाई यहां से तुम्हें प्रॉपर ज्ञान मिलेगा, तुम्हें ये करना है, ये करो तुम, इसके द्वारा तुम्हारी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगी। ऐसा नहीं मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ था, नहीं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों में हम सब उलझे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चला रहता है लाइफ में, है ना, क्योंकि लाइफ जीने का फ्रेंड्स सही तरीका हमें वाकई भगवत गीता बताती है ना, जिसमें हम लगता है कि हम बहुत लेट है, है ना। तो बिल्कुल मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा जो जो हमें समझ आ रहा है ना उनको बिल्कुल बताना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच ममता जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल एवरीवन। मोना जी, आज का सत्संग भी आपका बहुत ही डिवाइन रहा, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया एकदम डिटेल्ड में, और जहाँ तक मेरी लर्निंग बनी है कि जैसे आपने बताया कि भगवान का ऐश्वर्य है जो वो असीम है, यहाँ हमारी बुद्धि खत्म होती है, वहां पे भगवान की कृपा, भगवान का ज्ञान, वहां से सब कुछ शुरू होता है, इसीलिए हमें ज्यादा तर्कों वितर्कों में ना पड़ते हुए अपना फोकस सिर्फ प्रभु भक्ति में, अपनी जो डिवोशनल एक्टिविटीज है उनमें करना है, जैसे कि भगवान को जो चीज भगवान को अच्छी लगे, जो कर्म हम भगवान को अच्छे लगे, हमें उन कर्मों पर फोकस करना है, अपने आप में क्लैरिटी लानी है, शुद्धि लानी है, शुद्धि आते हुए हमें चलते 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 प्रेम बढ़ाते जाते अपना काम भगवान की तरफ करते 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 भगवान के धाम पहुंचने की तैयारी करनी है, तैयारी करते करते हो सकता है कि भगवान कभी पहुंचा भी दे, वो तो उनकी रही, बट अपना फोकस अब वही जो दी ने कहा ममता दी ने कि पता नहीं आज दिन चढ़ना है दूसरा नहीं चढ़ना, अभी श्वास आना है दूसरा श्वास आना नहीं आना, इसी चीज को माइंड में रखते हुए अब अपनी वो चीज अपना अपने कार्य करने हैं, कि पता नहीं कब क्या हो जाना है, इसीलिए अपना फोकस अपने इस पे ही रखना है, डिवोशनल एक्टिविटीज पे रखना है और जितना हो सके एक्टिविटीज को बढ़ाते हुए अपने कार्य करने हैं, भगवान को खुश करते हुए कार्य करने हैं, निस्वार्थ भाव से करने हैं जो हम कार्य कर रहे हैं और जो करेंगे उसमें बस यही लाना है, परमात्मा ये आप करवा रहे हो, इसके तो हम योग्य भी नहीं थे, जो करवा रहे हो वो आप करवा रहे हो और जो आगे करेंगे वो भी आप ही कराओगे, हम तो किसी भी कुछ है ही नहीं, पता नहीं फिर भी आपकी इतनी कृपा है, बस यही प्रार्थना हर टाइम करनी है और जो हमारे अंदर की मैल है वो दूर करो, बस अपना अपने रास्ते पर चलाओ, प्रेम और भक्ति और सेवा बख्शो बस। हरी हरी बोल।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लर्निंग ईशा जी, बहुत ही प्यारा आपने कहा, बिल्कुल जो भगवान कह रहे हैं ना, बस हमें उस पे फोकस करना है और फालतू तर्क वितर्कों में ये ऐसा होगा कैसा होगा, ये कैसे जो नए डिवोटीज है वो परेशान हो जाए कि ये कैसे होगा, इधर डिफिकल्ट रास्ता है ना, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, है ना। अब आप ईशा जी आप बता दो, आपको कितना टाइम होगा जुड़े हुए?
मुझे हो गया 1.5 साल तो हो रहा है।
हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको जुड़ के, अच्छा लग रहा है या लग रहा है कि यार कैसे मुझे करना पड़ेगा?
तो फर्स्ट डे से ही अच्छा लगना लग रहा था, बट काफी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, पहले से काफी रिलैक्स, मतलब इनर पीस जो होती है वो फील किया है, काफी मतलब काफी चेंजेस आई है लाइफ।
हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है ना, बस आप क्या रहे, रेगुलर रहे हो, है ना, ये भी हमारे रेगुलर डिवोटी है, बिल्कुल उन नित्य निरंतर चलते रहे, चाहे समझ आया शुरू में या नहीं आया, है ना, कई बार समझ आ जाती है कुछ चीजें नहीं भी समझ आती, तो हमें इतना प्रेशर नहीं लेना है, बस भगवान के अगर प्रार्थना कर लेने की, प्रभु मैं समझना चाहती हूँ आप जो बता रहे हो, मैं सब कुछ समझना चाहती हूँ और ये सब करना चाहती हूँ, ये आप भगवान से ये वाली प्रार्थना करोगे तो ये हो ही नहीं सकता कि भगवान आपकी बात ना सुने, जो भी आप सुनना चाहते हो, आपको लग रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप भगवान के साथ प्रेयर करना शुरू कर दो, आप नेक्स्ट डे से चेंजेस देखोगे कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं यार मुझे भी करना चाहिए, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को भी लाइफ में लेनी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जब दूसरा कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना। तो बिल्कुल हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लाइफ में बढ़ाना है ताकि हमारे अंदर शुद्धि आए और हम भगवान के रास्ते में आगे बढ़ सके, है ना। ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ईशा जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है?
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मोना जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन था, बहुत ही अच्छा था, और जो प्रभु का ऐश्वर्य है मुझे लगता है भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब हम मानव योनि में आते हैं तो हम सब में हम कोई ज्ञानी बनता है, कोई धनवान बनता है, तो किसी का तेज बहुत है, तो कोई ना कोई स्किल बहुत क्वालिटीज होती हैं, कोई उसमें एक्सेल कर जाता है, तो एक्सेल करने के बाद क्या होता है कि वो घमंडी कहूंगी ईगो आ जाती है, उसमें ये आ जाता है कि ये मेरी वजह से है, ये मैंने किया है, तो प्रभु अपना ऐश्वर्य इस पाठ के माध्यम से समझाते हैं कि प्रभु का जो ऐश्वर्य है, प्रभु का जो विस्तार है, विशालता है, वो सबसे भिन्न है, सबसे भिन्न है और सबसे अधिक है। जिस तरीके से आपने बहुत सारी एग्जाम्पल दी हमें, शेषनाग के फन के कण की तरह, अगर मैं भी एक एग्जाम्पल दूं तो हमारे सौर मंडल में, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक सौर मंडल नहीं है, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे, हमें तो सिर्फ एक ही की नॉलेज है, तो ये सारे और वही हमें हमारे अपना ही सोलर सिस्टम जो हमें इतना बड़ा लगता है, तो हजारों की काउंटिंग में सोलर सिस्टम्स हैं, और ये सब किसने बनाए हैं, किसने हैं इतने सारे, हमें अपने सोलर सिस्टम का एक सन के बारे में पता है, अगर इन थाउजेंड्स सोलर सिस्टम्स हैं तो उन सब में एक एक सन होगा, और वो सारे सूर्य, उन सारे सूर्य के जो सन की रेज, उनकी जो रोशनी है उससे भी ज्यादा जो प्रभु का तेज है, तो प्रभु इतने ज्ञानी हैं, तो हम सिर्फ इतने एक उस एज कम्पेयर टू पृथ्वी जो है एक छोटे से पत्थर की तरह है, और उस पत्थर पे हम एक तुच्छ प्राणी हैं, तो हम कितने छोटे हुए, और उसके बाद हम अगर थोड़ा सा हमें प्रभु की प्रभु कृपा से हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, या हम थोड़े से धनवान प्रभु कृपा से, वो भी प्रभु कृपा से, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये सब मैंने किया है, ये सब मैं ज्ञानी हूं, मैं धनवान हूं, और उसी को प्रभु की कृपा की जो हमें सब कुछ मिला है उसे हम प्रभु की सेवा में अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हम अपना नाम यूज करते हैं। ये मैं कर रहा हूँ, मैंने उसका अच्छा किया, मैंने इसका अच्छा किया, मैंने अपना ज्ञान, मैंने उसको ज्ञान दिया, ये सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। हम जो भी अच्छा कर रहे हैं, हम जैसे आज मैं हम ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं कहूंगी मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक के रास्ते पे चल पड़ी हूँ कि मैं गीता सुन रही हूँ, नहीं, ये मैं नहीं सुन रही, ये प्रभु है जो मुझे सुनने के लिए यहाँ, उनकी कृपा है जो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपके साथ सत्संग अटेंड कर रही हूँ। इस चीज में भी कई होंगे जो इस चीज का ईगो लेके मैं वर्ड यूज करते होंगे कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर समय हर पल सिर्फ प्रभु को ही याद रखना है और उसी को धन्यवाद करते रहना है कि उसके जैसा विशाल तेज ज्ञानी कोई भी नहीं है। हम तो सिर्फ एकमात्र उसके ही अंश हैं और उसी की कृपा से हमारे पास जो भी है उसी की कृपा से है हमारा। वो कहते हैं ना, जो कुछ है सब तेरा है, तेरा तुझको सौंप दिया, मेरा कुछ नहीं। तो सब प्रभु का है, इसने हमें अज्ञानी नहीं बनना ये तुच्छ बातें करके। तो ये जो है प्रभु की कृपा, मैं सच में कह रही हूँ, जब से मैं इस सत्संग ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैं ये नहीं कहती कि वरीज तो मैं अब वो वरीज वर्ड भी नहीं रहा। वरीज भगवान की कृपा से दिन रात की तरह आती हैं, जाती रहेंगी, जब तक प्रभु ने इस धरती पे हमें रखा है, हमारे अंदर जो सोल है रहेगी, वो आती रहेंगी। लेकिन उन वरीज को वरीज बना के अगर हम रखेंगे तो हमारी हम फिर भी इस आध्यात्मिक दुनिया में भौतिक ज्ञान को नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए समभाव रहिए, एक जैसा रहिए, सुख दुख से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फ्रेंड्स एक जैसा रहो, बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं, अगर कोई अच्छा काम होता है या कुछ गलत भी है तो उसमें बहुत दुखी भी नहीं, सब प्रभु के प्रसाद समझ के उसको अपनाओ और बिल्कुल भी अपने जीवन में जो है प्रभु की कृपा समझिए और प्रभु की ही भक्ति करिए। हरी हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स मीनाक्षी जी, बिल्कुल भगवान खुद ही कहते हैं ना कि भाई जो भी ज्ञान मिल रहा है आपको या जो भी आज ही पढ़ा हमने है ना 41 श्लोक में हमने आज ही पढ़ा कि जो भी तुम ऐश्वर्य देख रहे हो ना ये सब मेरा ही ऐश्वर्य। जो भी किसी में तुम सुंदरता देखते हो, जो भी तुम कोई भी ज्ञान है अगर किसी में है ना, अगर भगवान किसी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को सुंदर बना सकते हैं, तो भगवान वही बात है ना कि अगर ज्यादा कोई अहंकारी व्यक्ति हो है ना तो उससे वो ज्ञान छीना भी जा सकता है ना। ये हम एग्जाम्पल्स कई बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना। और एक सबसे बड़ी बात है ना, ये जो लाइफ में जो सुख दुख आते हैं ना, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है जो दुख का टाइम है ना वो सबसे बड़ी लर्निंग्स लेके आता है हमारी लाइफ में। सबसे बड़ी लर्निंग कि ये मेरा दुख का टाइम आया है तो भाई इसमें मुझे कैसे ठीक होना है, मुझे कैसे भगवान से और जुड़ना है। और अगर हम भगवान को ब्लेमिंग ही करते रहे या लोगों को ब्लेमिंग करते रहे, फिर हम भगवान से नहीं जुड़ सकते है ना। जितना हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं उतना हम भगवान से जुड़ते जाते हैं, है ना। तो कभी भी आप अपने लाइफ में, कोई भी अपना लाइफ में देखेंगे ना, तो जो लाइफ में दुख का टाइम होता है ना, उससे ज्यादा हम अगर हमें अहंकार ना हो, है ना, अगेन फिर वही बात है कि अगर हमें अहंकार ना हो, हम किसी को ब्लेम ना करें, तो हम भगवान से ज्यादा जुड़ते हैं और भगवान भी हमें फुल प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि देखो दुख का टाइम तो आना ही है। अब ये नहीं कि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे लाइफ में दुख का समय नहीं आएगा, है ना। भगवद गीता पढ़ रहे हैं चाहे हम भगवान से जुड़े, दुख का समय तो आना ही आना है, दुख भी आना है, सुख भी आना है। बस जो दुख का समय वो आके कैसा चला जाएगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा, बस भगवान इतनी हमें स्ट्रेंथ दे देंगे कि वो हमें पता ही नहीं चलता, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। नमीना दीदी आज आपके टर्न है भजन की, आप गा सकते हो। हाँ जी, हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। मोना जी, हमेरा हमेशा की तरह आज का सत्संग भी बहुत ही आनंदमय रहा। आप बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हो और इससे हमारे में बहुत ही क्लैरिटी आ रही है। हम भक्ति तो पहले भी करते थे परंतु अब भक्ति में हमें ज्यादा आनंद आने लगा है। मैंने अपने नाम जाप को भी बढ़ाया है और इससे मुझे इनर पीस भी बहुत मिल रही है। मेरे बेटे ने भी ये सत्संग ज्वाइन किया हुआ है और सच में हम दोनों में बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। अब मैं आपके साथ भजन शेयर करने जा रही हूँ। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी। चीर बड़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। चीर बड़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बढ़ाना है, मेरी लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। शबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई, शबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण।